दिन भर 20 नवंबर दिन रविवार, मैं हूं संदीप सोनी। कानपुर के पास पटना इंदौर एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 100 से अधिक लोगों की मौत।
किसी का पैर कटा, किसी का हाथ टूटा, तो कोई बोल रहा है।
ज्यादातर लोग भाग रहे थे, जो बच गए
थे, जो बच गए थे वो तो निकल गए थे रोड के तरफ।
और जिसका कोई साथी है वो उसके लिए रो रहा है कि उसे निकाल लिए।
अपनों का हालचाल जानने के लिए परिजन दिन भर होते रहे परेशान।
सुबह में 6 बजे फोन किए थे तो उनका जेब में मोबाइल बज रहा था, तो बगल वाले कोई थे तो वो उठाए तो बोले डेट कर गए हैं।
क्या भारत बुलेट ट्रेनों के लिए तैयार है?
नई लाइनों को जोड़ने के बदले जो वर्तमान लाइनें हैं उनके ही रखरखाव पर विशेष जोर देना चाहिए और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए।
सुनिए एक ट्रेन ड्राइवर की आप बीती जिसे आराम नहीं मिलता। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। कानपुर रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 112 के पार पहुंच गई है। रेलवे ने हादसे के शिकार हुए यात्रियों के लिए एक विशेष ट्रेन का इंतजाम किया है। ये ट्रेन आज दोपहर 2 बजे 794 यात्रियों को लेकर कानपुर से रवाना हुई, जो लखनऊ और मुगलसराय के रास्ते पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल तक आएगी। कानपुर के पास आज तड़के करीब 3 बजे इंदौर से पटना जा रही पटना इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतरने के कारण यह बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 75 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि कानपुर रेल हादसे की जांच होगी और जो भी लोग हादसे के लिए जिम्मेदार होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीरिया के एलेपो शहर में मिल रही खबरों के मुताबिक शहर के सरकारी नियंत्रण वाले पश्चिमी हिस्से में विद्रोहियों की गोलाबारी में 7 बच्चों की मौत हो गई है। सीरिया की सरकारी मीडिया का कहना है कि पश्चिमी एलेपो के फरकान जिले में विद्रोहियों के दागे गए गोले स्कूल में गिरे, जिससे बच्चों की मौत हुई। वहीं कार्यकर्ताओं और डॉक्टरों का कहना है कि विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी हिस्से में एक परिवार के 6 लोगों की दम घुटने से जान चली गई। उनके जिले में क्लोरीन गैस युक्त एक बैरल बम गिरा था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस में आज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनने के लिए हो रहे एक प्राथमिक चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। ये चुनाव मध्य दक्षिणपंथी रुझान वाली विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी करा रही है। इस चुनावी दौड़ में शामिल 3 बड़े प्रत्याशी सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े रहे हैं। ये हैं पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी और 2 पूर्व प्रधानमंत्री एलेन जूप और फ्रेंकोइस फिलोन। पेरिस में बीबीसी संवाददाता का कहना है कि प्रत्याशी चुनने के लिए हो रहा है ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जीतने वाला व्यक्ति फ्रांस का अगला राष्ट्रपति बन सकता है। पेरिस में एक मतदाता ने अपनी पसंद बताई।
Je viens du centre gauche et que j'estimais que...
एक मतदाता पियरे ने कहा, मैं मध्यवाम समर्थक हूं और मुझे लगता है कि इस समय राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिण पंथियों की जीत की संभावना ज्यादा है। सबसे उदारवादी उम्मीदवार मेरे लिए सबसे मुनासिब है। पेरिस में एक मतदाता पियरे के शब्द। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने अपनी CDU पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों से कहा है कि वे अपने पद पर 4थी बार बने रहने के लिए प्रयास करेंगी। जर्मन समाचार एजेंसी DPA का कहना है कि आज वे इसका औपचारिक ऐलान करेंगी। एंगेला मर्केल 11 सालों से जर्मनी की चांसलर हैं। ब्रिटेन के यूरोप छोड़ने के फैसले और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के अगले राष्ट्रपति चुने जाने के बाद यूरोप में आई अनिश्चितता के इस दौर में बहुत बड़ा वर्ग मर्केल को स्थिरता लाने की एक शक्ति के रूप में देखता है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की तीसरी सभा दिन भर में सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं। दिन भर का सीधा प्रसारण। भारतीय रेलवे के दुर्घटनाओं के इतिहास में आज उस वक्त एक नया अध्याय जुड़ गया जब उत्तर प्रदेश में कानपुर के नज़दीक पुखराया में पटना इंदौर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में यात्री घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे भारत में रेल के डिब्बे पटरी से क्यों उतरते हैं, भारतीय रेल प्रणाली में कहाँ कौन से गड्ढे हैं जिनकी वजह से हादसे होते हैं, और आज आप सुनेंगे पहली बार उस आदमी की व्यथा जो इंजन में बैठकर पूरी की पूरी ट्रेन खींचता है, जिसकी दिक्कतों पर कभी किसी की नज़र नहीं जाती। लेकिन पहले आइए सीधे चलते हैं कानपुर के पास, उस जगह जहां से ये आवाज़ आ रही है।
किसी का पैर कटा, किसी का हाथ टूटा, तो कोई बोल रहा है।
ज्यादातर लोग भाग रहे थे, जो बच गए थे।
जो बच गए थे वो तो निकल गए थे रोड की तरफ।
और जिसका कोई साथी है वो उसके लिए रो रहा है कि उसे निकाल लिए, इसको मेरे को निकाल लिए।
पहचान वालों को भी हम लोगों ने मिलवाया है,
हम लोगों ने उनकी भी सुनी, ले जाके वहाँ कम्बल उड़ा उड़ा के लिटा दिया जब तक गाड़ी नहीं आई।
पहचान वालों को भी मिला दिया।
एम्बुलेंस आने लगी तो हम लोग उनको एम्बुलेंस में रख के भेजने लगे।
ये आवाज़ें हैं उन लोगों की जो कानपुर के नज़दीक उस जगह पर राहत बचाव कार्य में जुटे थे, जहां पटना इंदौर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे आज तड़के पटरी से उतरे हैं। और आइए अब सीधे चल रहे हैं बिहार की राजधानी पटना, जहां रेलवे स्टेशन के अंदर बाहर उन लोगों की सांसें एक तरह से उखड़ी हुई हैं जिनके परिजन पटना इंदौर एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे थे, जिन्हें अपने घर पहुँचना था लेकिन ऐसा हो ना सका।
फोन हुआ था तो बोला आदमी एक्सपायर कर गया आपका।
क्या नाम था उनका?
शिव कुमार यादव।
वही काम करते थे?
हाँ हाँ, वहाँ पर 10-12 बरस से काम कर रहा था।
वहीं से फ़ोन आया आप?
नहीं नहीं, इधर से फ़ोन किया था।
आप लोग को पता कैसे चला?
जैसे न्यूज़ मिला है ट्रेन एक्सीडेंट कर गया था, आदमी आ रहा था तो ऐसा बात थोड़े है, आदमी आ रहा था उसका नहीं पता रहता है। फ़ोन किया गया उसके मोबाइल पर तो कोई सज्जन उठाए, बोले आपका आदमी एक्सपायर कर गया है, अभी भी उस नंबर से बात होता है।
तो वो जो सूचना दिए वो कौन थे?
कौन थे ये तो नहीं बता सकते हम।
उनका बॉडी कहाँ है?
अकबरपुर हॉस्पिटल में है।
आपका नाम क्या हुआ?
हमारा नाम भुवन कुमार हुआ।
कहाँ से आया?
बेगूसराय पांसरा
35S1।
आप अपना नाम बताइए।
मेरा राकेश हुआ, राकेश श्रीवास्तव।
कौन आ रहे थे?
हमारे पिसा जी, हमारे फूफा जी आ रहे हैं। फुआ और फूफा जी आ रहे हैं, उज्जैन से आ रहे हैं। तो एक्चुअली S1 में थे, 34 और 35 नंबर बर्थ है उनका।
यहाँ क्या जानकारी मिली?
एक्चुअली अभी तो यहाँ से कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है, जो भी लिस्ट है अभी उनका नाम नहीं है। तो
आपने संपर्क करने का कोशिश किया होगी?
वहाँ कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, लग ही नहीं रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ है उनका, जो उनका नंबर है वो स्विच ऑफ है। और हमारे चाचा जी वगैरह भी भागलपुर से आ रहे हैं।
और ये लोग कहाँ गए थे?
उज्जैन गए हुए थे, उज्जैन से आ रहे हैं।
आप अपना नाम बताइए।
ललन कुमार यादव। सुबह में 6 बजे फ़ोन किए थे तो उनका जेब में मोबाइल बज रहा था, तो बगल वाले कोई थे तो वो उठाए तो बोले डेट कर गए। उसके बाद फिर फ़ोन किए तो समझ गए डेट कर गए, वो बताए डेट कर गए, अपना बॉडी ले जाइए, बॉडी यहाँ पड़ा हुआ है।
कौन थे
वो? हमारा भाई चचा का लड़का थे, शिव कुमार यादव नाम था।
कहाँ से आ रहे थे?
इंदौर से।
पटना रेलवे स्टेशन पर शोक संतप्त परिजनों से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी नीरज सहाय। और आइए एक बार याद करते हैं आज सुबह का मंजर, जब कानपुर के पास पटना इंदौर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतरे कृष्ण केशव उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे।
3 बजे सुबह की बात थी, तो वैसे तो जोड़ के 3-4 झटके लगे हमें, हमारी नींद खुल गई। हम लोग S12 में थे, बहुत जोर से आवाज भी आई, उस समय काफी अंधेरा भी। हम लोग आगे जाके देखे तो पता चला कि बोगी पटरी से उतरी हुई है। आगे जो बोगी थी S5 से, कुछ बोगी पटरी से बाहर थी और कुछ बोगी आपस में कोलाइड हो गई थी। आसपास के गांव वाले आए थे हेल्प करने, लोगों को भी निकाला, कुछ घायल थे, कुछ डेड बॉडीज भी थी साथ में। 1 घंटे बाद पुलिस आई, उन्होंने उसके बाद रेस्क्यू स्टार्ट किया। हम लोग पीछे के डब्बे में थे तो बस चोटें आई किसी किसी लोगों को, जिनके सर वगैरह में कुछ चोटें आई। तो हालांकि एम्बुलेंसेस आ रही है लेकिन थोड़ी और जरूरत है, और एम्बुलेंसेस की जरूरत।
ये थे एक यात्री कृष्ण केशव, जो बता रहे थे सुबह ट्रेन जब पटरी से उतरी और राहत बचाव कार्य शुरू हुआ तब एम्बुलेंस की कमी थी। कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे भारत में ट्रेन पटरी से क्यों उतरती है और ट्रेनों को खींचने वाले इंजन में बैठे ड्राइवरों की क्या दिक्कतें हैं, लेकिन पहले सुनते हैं सरकार, सरकारी पक्ष और रेल प्रशासन इस हादसे पर क्या कह रहा है।
काफ़ी जो बॉडीज प्रथम दृष्टया जो दिखता था और पूरी गहन छानबीन के बाद देख लिया गया कि अब कोई जिंदा बॉडी नहीं है, तो अब जो ट्रैक्स के ऊपर जिस प्रकार से गाड़ियां बोगीज एक दूसरे के बीच में घुसी हैं उनको अब क्रेन के माध्यम से हटाया जा रहा है। और निश्चित रूप से कुछ जो और भी हो सकता है कि इस प्रकार से बॉडीज हों उसकी भी तलाश जारी है।
ये थे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी। और आइए अब सुनते हैं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा क्या कहते हैं।
जैसे ही सूचना मिली हमारी कानपुर और झांसी से 2 मेडिकल रिलीफ गाड़ियां यहां आ गई। जितनी तत्परता से राहत के काम किए जा सकते हैं वो रेलवे प्रशासन कर रहा है, स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है, स्थानीय नागरिकों का भी। मैं समझता हूं कि रेलवे आभारी है जिन्होंने बहुत सहयोग किया है। वरिष्ठ अधिकारी हर जगह तैनात कर दिए गए हैं ताकि लोगों का इलाज ठीक से हो सके और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को कोई दिक्कत न हो।
ये थे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा। सबके अपने अपने दावे हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कानपुर से हमारे सहयोगी रोहित घोष। रोहित, आप दिन भर दौड़ भाग करते रहे हैं आज, ये बताएं कि राहत और बचाव कार्य को लेकर सरकार पक्ष जो दावे कर रही है उसमें कितना दम है, क्या कुछ देखा आपने आज घटनास्थल और अस्पतालों में?
देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक ये राहत कार्य का सवाल है तो वहाँ पे काफी अच्छी व्यवस्था की है और काफी सारे एम्बुलेंस जो है वो इमीडिएटली पहुंचा दिए गए थे और मतलब एम्बुलेंस जो है मतलब वहाँ पे काफी खड़े थे, जो रेस्क्यू वर्कर्स थे वहाँ पे काफी थे और इमीडिएटली जो है मतलब मेरी जो रेस्क्यू वर्कर्स है उनसे बात भी हुई थी। तो जैसे ये एक्सीडेंट कहा जा रहा है वो 3:10 सुबह के 3:10 पे हुआ था, तो मुश्किल मतलब 15 मिनट के अंदर ही जो है वहाँ पे उसी के पास एक माती स्टेशन है, वहाँ माती से ही जो है ये फायर ब्रिगेड के जो वर्कर्स हैं उनको भेज दिया गया था, उन्होंने जो है इमीडिएटली काम शुरू कर दिया था और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है ये डॉक्टर्स पहुँचने लगे, एम्बुलेंसेज पहुँचने लगे, फिर पुलिस के और कर्मी पहुँचने लगे। तो मतलब उस तरह की कोई वो नहीं था कि मतलब राहत कार्य नहीं था, और जैसे जैसे मतलब सुबह हुई रोशनी हुई मतलब राहत कार्य जो है बहुत ही स्मूथली चल रहा था और काफी सारे डॉक्टर्स वहां पे थे और
रोहित ये बताएं रोहित कि अस्पतालों में आप गए, किस तरह का मंजर आपने देखा, घायलों को किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं या उन्हें कोई दिक्कत ही पेश नहीं आ रही जैसा कि प्रशासन दावा कर रहा है?
नहीं देखिए, वो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएंगी अगर अचानक इस तरह की इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, लेकिन दूसरे उसके हिसाब से ये मतलब इस समय जो है मतलब काफी जो है ये मतलब राहत का काम किया है और मतलब लोगों को राहत मिली भी है, मतलब जैसे कि मतलब वो हॉटस्पॉट होना चाहिए था वो इस समय नहीं था।
बहुत शुक्रिया, ये थे कानपुर से हमारे सहयोगी रोहित घोष। और आइए अब आपको बताते हैं पटना इंदौर एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने के कारण किन ट्रेनों को स्थगित करना पड़ा और किन ट्रेनों का मार्ग बदला गया है।
सबसे पहले बात उन ट्रेनों की जिन्हें रद्द कर दिया गया है। झांसी लखनऊ इंटरसिटी ट्रेन नंबर 11109, झांसी कानपुर पैसेंजर ट्रेन नंबर 51803, झांसी लखनऊ पैसेंजर ट्रेन नंबर 51813। और जिन ट्रेनों के रूट बदले गए हैं उनके नाम और नंबर इस प्रकार हैं: लोकमान्य तिलक गोरखपुर सुपरफास्ट ट्रेन नंबर 12542, राप्ती सागर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12522, साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 19167, कुशीनगर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 11015 और 11016। वहीं पुष्पक एक्सप्रेस 12534 को उरई स्टेशन लौटाया गया है। मुसाफिरों और उनके परिवारों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर हैं: पटना के लिए 0612-220-2290, 0612-220-2291, 0612-220-2292, 025-83288। इंदौर के लिए हेल्पलाइन नंबर है 0741-1072 और कानपुर के लिए हेल्पलाइन नंबर है 0512-1072।
ये थे हमारे सहयोगी वैभव श्रीवास्तव। और आइए एक नज़र उन प्रमुख ट्रेन दुर्घटनाओं पर जो भारत में पिछले लगभग 30 वर्षों में हुई हैं, जिसका सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है।
जून 1981 की बात है जब बिहार में तूफान के कारण ट्रेन नदी में जा गिरी। इस हादसे में 800 लोग मारे गए थे और हजार से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
एक दुर्घटना फरवरी 1985 में हुई जब तत्कालीन मध्य प्रदेश के राजनांदगांव में एक यात्री गाड़ी के दो डिब्बों में आग लग गई, जिसकी वजह से 50 लोगों की मौत हुई और अनेक घायल हुए।
बात है दिसंबर 1993 राजस्थान की, जब कोटा बीना एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से जा टकराई। 71 लोगों की मौत हुई और बहुत से लोगों को गंभीर चोट आई।
अगस्त 1995 में नई दिल्ली जा रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस से फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में जा टकराई। इस दुर्घटना में 250 लोगों की मौत हुई और 250 से ज्यादा लोग घायल।
अप्रैल 1996 एर्नाकुलम एक्सप्रेस दक्षिण केरल में एक बस से टकराई। इस हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई और 50 यात्री घायल हुए।
एक और दुर्घटना हुई नवंबर 1998 में खन्ना पंजाब में, जब फ्रंटियर मेल सियालदा एक्सप्रेस से टकरा गई, जिसकी वजह से 108 मौतें हुई और 120 लोग घायल हुए।
ऐसी ही एक और दुर्घटना हुई अगस्त 1999 गैसल पश्चिम बंगाल में, जब दिल्ली जा रही ब्रह्मपुत्र मेल अवध असम एक्सप्रेस से टकराई। इस हादसे में 285 लोगों की मौत हो गई और 312 लोग घायल हुए।
जून 2001 में मंगलोर चेन्नई मेल केरल की कडलुंडी नदी में जा गिरी। इस हादसे में 59 लोग मारे गए।
सितंबर 2002 में हावड़ा से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 120 लोग मारे गए।
फरवरी 2005 में महाराष्ट्र में एक रेलगाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई थी और इतने ही घायल भी हुए थे।
वहीं मई 2010 में हुए एक संदिग्ध नक्सली हमले में पश्चिम बंगाल में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पटरी से उतरी। इस हादसे में 170 लोगों की मौत हो गई।
भारतीय रेलवे के इतिहास में साल 2012 हादसों के मामले में सबसे बुरे सालों में से एक रहा। इस साल लगभग 14 रेल हादसे हुए। इनमें पटरी से उतरने और आमने सामने टक्कर होने जैसे हादसे शामिल हैं।
जुलाई 2012 को दिल्ली से चेन्नई जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस के एक कोच में नेल्लोर के पास आग लग गई थी, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे।
दिसंबर 2013 में बंगलुरु नांदेड़ एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई थी और इसमें 26 लोग मारे गए थे। आग एयर कंडीशन कोच में लगी थी।
उसी साल अगस्त में राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से बिहार के खगड़िया जिले में 28 लोगों की जान चली गई थी।
मार्च 2015 में रायबरेली के पास देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में 34 लोग मारे गए थे।
ये थी हमारी सहयोगी उपासना भट्ट और वैभव श्रीवास्तव। तो भारत में रेल दुर्घटनाओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कोई साल ऐसा नहीं बीतता जब भारत में बड़ी रेल दुर्घटना ना हो। क्या बुलेट ट्रेन के सपने देखने वाला भारत रेलवे के पुख्ता बुनियादी इंतजामों से वंचित है? क्या अच्छी ट्रेन, अच्छी पटरी, अच्छे इंतजाम नहीं है? और क्यों पटरी पर दौड़ती ट्रेन अचानक पटरी से उतर जाती है? इसी तरह के सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने आपसे कुछ देर पहले बात की आदित्य प्रकाश मिश्रा से, जो रेलवे इंजीनियरिंग बोर्ड में सदस्य रह चुके हैं, जिन्हें भारतीय रेलवे का 38 वर्षों का अनुभव है।
तीन चार कारण हो सकते हैं। एक तो कारण हो सकता है कि कोई सामने ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए एकाएक। कई बार ऐसा होता है कोई कैटल बहुत भारी आ जाता है, उससे टकरा के गिर गई गाड़ी। कोई पार्ट्स गिर पड़े, इंजन का या किसी कोच का पार्ट गिर पड़े और उसके ऊपर उसका व्हील चढ़ जाए गाड़ी का। तीसरा हो सकता है कि रेल की पटरी टूट जाए। रेल की पटरी अगर टूटी हुई हो तो इंजन, वैसे तो ऐसी स्थिति में इंजन के साथ गिरना चाहिए। यहाँ पर इंजन गिरा नहीं है, जैसा मुझे लगता है इंजन के बाद से ही डिरेलमेंट हुआ है। फिर ऐसा हो सकता है कि इंजन गुजर जाता है और उसके बाद वो पटरी जो अलग थी वो ज्यादा गैप बड़ा हो जाता है और पीछे की गाड़ियां गिर जाती है। और चौथा जो कई बार किसी किसी एरिया में होता है, वो सैबोटेज का कारण होता है। सैबोटेज की वजह से गाड़ियों को गिराने का कार्य कोई जो भी ऐसे एलिमेंट्स हैं एंटी सोशल एंटी नेशनल वो कर देते हैं। तो मेरा ख्याल से अगर मिड सेक्शन में गाड़ी गिरी है दो स्टेशन के बीच, तो यही चार कारण हैं जिनसे की गाड़ी गिर सकती है।
मिश्रा जी, ये बताइए कि ये रेल दुर्घटना उसी भारत में हुई है जहां पर बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है। आपको लगता है कि भारत बुलेट ट्रेन चलाने के लिए तैयार है या अभी और बुनियादी ढांचे को बेहतर करने की जरूरत है?
जहाँ तक हाई स्पीड या अल्ट्रा हाई स्पीड की गाड़ियां चलाने का प्रश्न है, देखिए जितनी आप हाई स्पीड करेंगे ओवरऑल वर्ल्ड में जो सिस्टम्स हैं उसमें उतनी ज्यादा सेफ्टी बिल्ट इन होती है, उतने ही सिस्टम्स स्ट्रांग होते हैं। और इसीलिए अब तक जो है जापान की फास्ट ट्रेन बुलेट ट्रेन वगैरह है उसमें पिछले करीब 50-52 सालों से चल रही है, उसमें एक भी दुर्घटना नहीं हुई है। लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है। जैसे 500 किलोमीटर की लाइन जो है वो करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की बनी हुई। उतना खर्चा करके जब हमारे देश में अभी जो बेसिक लाइंस हैं उन लाइंस पर ही अभी सेफ्टी के लिए हम पूरा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो कोई दूसरा देश आके बना दे और कुछ फाइनेंसिंग ऐसी हो कि हमारे रेलवे से फाइनेंस उसमें ना जाए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर रेलवे का पैसा उसमें जाता है तो अभी तो रेलवे इस स्थिति में नहीं है कि इतना खर्चा कर सके, और अभी जो वर्तमान बुनियादी ढांचा है उसी का ध्यान देना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है।
और आपको क्या लगता है इस मामले में जो कानपुर में रेल दुर्घटना हुई है, 14 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, आपको लगता है कि ये क्या मानवीय चूक की वजह से हो सकती है या तकनीकी इसमें कुछ खामी भी हो सकती है?
नहीं, इसमें मानवीय चूक तो नहीं होगी। मानवीय चूक तो देखिए तब होती है, एक तो ड्राइवर की लापरवाही हो, उसका कोई कारण लगता नहीं है क्योंकि सीधी लाइन पर गाड़ी गिरी है। दूसरा ये, और ड्राइवर गाड़ी कितनी तेज चलेगा, 100 से 110, 110 से 120, उस पर वो सारे डिब्बे टेस्टेड होते हैं, उसमें गिरने का प्रश्न नहीं है। तकनीकी फेल्योर जो है वो ये हो सकता है, जैसा मैंने आपसे कहा कोई पार्ट गिर गया हो, या इस समय ठंडक के समय एक रेल फ्रैक्चर भी कारण होता है कि अगर रेल की पटरी टूट जाए, तो मुझे तो ये तकनीकी कारण लगता है। वो तकनीकी कारण के पीछे अगर मानवीय ढिलाई या मानवीय भूल हो तो वो जब कारण पता चलेगा तभी बताया जाता
है। हो सकता है कि आपने भी वो बात महसूस की हो जो मैंने महसूस की है।
जी, जी।
वो बात ये है जो अक्सर हमने महसूस की है कि रेल दुर्घटनाएं आमतौर पर देर रात या तड़के होती हैं, ये क्या कुछ संयोग है या इसके पीछे कुछ खास वजह हो सकती है?
नहीं, इसका कारण ये है कि दिन भर तो रेल पटरी पे कोई ना कोई रहता है, और दिन के समय थोड़ी अलर्टनेस ज्यादा रहती है सबकी, और कोई ना कोई हमेशा रेल पटरी पर रहता है। थोड़ी थोड़ी दूर पे गैंगमैन काम करते रहते हैं, कीमैन घूमते रहते हैं, स्टेशनों पे लोग रहते हैं काफी संख्या में, लोग ऐसे भी मनोरंजन के लिए भी काफी लोग घूमते रहते हैं पटरियों पे, तो कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो उसकी सूचना कहीं ना कहीं से मिल जाने की संभावना है। रात में कोई ऐसी चीज होती नहीं है तो फिर रात में मतलब कोई सूचना नहीं मिल पाती, अगर कोई चीज हो गई तो फिर वो दुर्घटना में ही परिणत हो जाती है।
क्या आपको लगता है कि भारतीय रेलवे को कुछ बड़ा सुधार करने की जरूरत है रेलवे में, प्रबंधन में, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके और दुर्घटनाओं की संख्या को बिल्कुल न्यूनतम किया जा सके?
मेरा तो ये ख्याल है कि नई लाइनों को जोड़ने के बदले जो वर्तमान लाइनें हैं उनके ही रख रखाव पर विशेष जोर देना चाहिए, और उसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जब जो चीज बदली होनी है, जितनी जिसकी लाइफ है, और उस समय उसको बदल देना चाहिए। रोलिंग स्टॉक हो या ट्रैक हो या सिग्नलिंग हो, कोई भी चीज हो या ब्रिजेस हो, अगर हम उसको क्या करते हैं कई बार की लाइफ को स्ट्रेच करते हैं किसी वजह से कि भाई पैसा नहीं है उसका, हम कहेंगे कि अगर जो 4 महीने में इंस्पेक्शन होना चाहिए तो हम 3 महीने में कर लेंगे, 2 महीने में इंटेंसिव इंस्पेक्शन करेंगे और इसकी लाइफ को बढ़ाते रहेंगे, तो उसमें फिर वो कब का फैटिक के कारण कब वो फेल्योर हो जाए पता नहीं चलता है। तो मेरा तो ये कहना है कि मेंटेनेंस पे जोर देना चाहिए, और जहां तक हो सके जो भी जिस कॉम्पोनेंट की लाइफ डिसाइड हुई है उस समय उसको बदल देना चाहिए।
ये थे रेलवे इंजीनियरिंग बोर्ड के पूर्व सदस्य आदित्य प्रकाश मिश्रा। सबकी बात हो चुकी है, अब बात उसकी जिसकी बात हम आमतौर पर कभी नहीं करते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस ड्राइवर की जो ट्रेन के इंजन में बैठकर आपको अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुँचाने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन उसकी समस्या, उसकी दिक्कत पर कभी चर्चा नहीं होती। सुनिए एक ट्रेन ड्राइवर की आप बीती।
बहुत सी प्रॉब्लम तो टेक्निकली है, जैसे कि रात के टाइम आगे हमको कभी कभी तो ये होता है कि 10 मीटर आगे नहीं दिखता, हेडलाइट की जो विजिबिलिटी रहती है, फोकस जो रहता है, एक्चुअल में जाना चाहिए वो 200 मीटर से ऊपर, 340 मीटर, परंतु मतलब अधिकतर तो फोकस कम रहता है, तो ये सर्दियों में जो रेल ब्रेकेज जो होते हैं वो हमको मतलब मालूम नहीं पड़ पाते। अचानक यदि सामने कुछ आ गया तो हम गाड़ी तो रोक नहीं सकते, बस ये है कि इमरजेंसी ब्रेक लगा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और भी दूसरी जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, जैसे इंजन में हम लोगों को फ्रेंडली कैब जो बोलते हैं वो नहीं मिलता, जैसे कभी बैठने में प्रॉब्लम होती है, मतलब तो बोल सकते हैं आप आरामदायक तरीके से हम लोग ड्राइव नहीं कर पाते, तो उसमें भी ध्यान बटा रहता है। और खासकर ये सर्दियों में ये होता है कि दरवाजे टूटे हैं या उसमें से ठंडी हवा आ रही है, उस वजह से भी थोड़ा सा ध्यान बटा रहता है, ठंड लग रही है, आप गाड़ी चला रहे हैं, हवा पूरी अंदर आ रही है आपके पास, यही प्रॉब्लम गर्मियों में भी होती है। और दूसरी और भी प्रॉब्लम होती है रेस्ट और छुट्टियों की, कि आप ड्यूटी कर आए एक बार 12 घंटे 16 घंटे बाद फिर आपको जाना है, तो उसमें आपको रेस्ट भी करना है, प्लस आपका परिवार है तो आप जाहिर सी बात है आप घर के काम भी करेंगे, तो आप कितना रेस्ट कर पाएंगे, और उसमें भी आपको पूरी नाइट वर्किंग करना है, तो और रेस्ट की भी समस्या रहती है, दिनों दिन पोस्ट कम होती जा रही है, ट्रेनें बढ़ती जा रही हैं, और उस वजह से फिर स्टाफ की कमी की वजह से रेस्ट भी नहीं मिल पाता, तो अब मालूम पड़ा आप एक नाइट कर आए पूरी, सबसे बाद आपने दिन में 12 से लेकर 16 घंटे मिले, 12 से 16 घंटे में आपको रेस्ट भी करना है, प्लस आपके परिवार के लिए घर के काम भी करना है, और उसके बाद आपको ड्यूटी भी जाना है, नहीं हो पाता। और फिर छुट्टियों की भी प्रॉब्लम रहती है कि मालूम पड़ा आप कोई फंक्शन है या मतलब सामाजिक जीवन जो है वो उसके लिए बिल्कुल हम लोग मैनेज नहीं कर पाते। त्योहार है, त्योहार तो आपको मालूम है सारे त्योहार हमारे छुट्टी मिलती नहीं है, सब ड्यूटी पे ही जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को जो है रेस्ट और छुट्टी की प्रॉब्लम है, तो कम होने की वजह से जो है हमको हर 12 घंटे 16 घंटे में और कभी कभी तो कम से कम 3-4 नाइट कंटिन्यू करना पड़ती है।
अभी आप सुन रहे थे एक ट्रेन ड्राइवर की आप भी थी।
हम है बेखौफ, हम है दमदार, हम है क्रिएटिव, हम है असरदार, हम दिखाते नए रास्ते, सुनाते कहानियाँ, हम है 100 विमेन। खास कार्यक्रम और बहस के जरिए सुनाएंगे हम दुनिया भर की औरतों के संघर्ष और सफलता की कहानियाँ। बीबीसी स्पेशल 100 विमेन।
21 नवंबर सोमवार से हम लाएंगे विशेष साक्षात्कार, रिपोर्ट और बहुत कुछ ऐसा जो आपने इससे पहले देखा सुना नहीं होगा। और अब खेल समाचार। आदेश कुमार गुप्त खेल समाचारों के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं।
जी संदीप, अगर बैडमिंटन से शुरुआत की जाए तो रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता भारत की पीवी सिंधु ने चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया। 7वीं वरीयता के साथ इस टूर्नामेंट में खेलने वाली सिंधु ने फाइनल में चीन की ही 8वीं वरीयता हासिल सुन यू को 1 घंटे 9 मिनट तक चले संघर्ष के बाद 21-11, 17-21, 21-11 से हराया। ये पीवी सिंधु की चाइना ओपन में पहली खिताबी जीत है। उनकी खिताबी जीत को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश।
चाइना ओपन में जैसे उन्होंने अपना जो खिताबी दौर था वो इतना अच्छा निकला इसलिए क्योंकि उनके ऊपर रैंकिंग में कम से कम 3 लड़कियां ऐसी थी जो कि इनको उनको हरा के ही ये खिताब जीतना था और उन्होंने तीनों को हराया। और उसमें से भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2 लड़कियां चाइना की हैं जो अभी फिलहाल चाइना की नंबर 2 और नंबर 3 पे हैं।
और पीवी सिंधु ने इससे पहले कोरिया की सुंगजी ह्यून को भी 11-21, 23-21, 21-19 से हराया था। दरअसल ये मुकाबला फाइनल मुकाबले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कठिन था। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापत्तनम में खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच बेहद रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। आज खेल के चौथे दिन इंग्लैंड के सामने भारत ने जीत के लिए 405 रनों का लक्ष्य रखा और जब चौथे दिन का खेल समाप्त हुआ तब इंग्लैंड का स्कोर दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 87 रन था। एक समय तो सलामी बल्लेबाज कप्तान एलिस्टर कुक और उनके जोड़ीदार हसीब हमीद ने पहले विकेट के लिए 75 रन जोड़ लिए थे, लेकिन 75 रन के स्कोर पर ही हमीद आर अश्विन की गेंद पर 25 रन बनाकर LBW हुए। इसके बाद खुद एलिस्टर कुक भी 54 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंद पर LBW हो गए और इसके साथ ही भारतीय खेमे में खुशी छा गई। इससे पहले आज भारत ने अपनी दूसरी पारी 3 विकेट पर 98 रन से आगे शुरू की और वो 204 रनों पर समाप्त हुई। दूसरी पारी में कप्तान विराट कोहली कुछ जमकर बल्लेबाजी कर सके और उन्होंने 109 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौकों की मदद से 81 रन बनाए। इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड ने 33 रन देकर 4 और आदिल रशीद ने 82 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। इंग्लैंड को जीत के लिए अभी भी 318 रनों की दरकार है और उसके 8 विकेट बाकी हैं। उधर दिल्ली हाफ मैराथन आज समाप्त हुई जहां गत ओलंपिक मैराथन चैंपियन कीनिया के एलियुड किपचोगे ने इस मैराथन को अपने नाम किया। किपचोगे ने पुरुष वर्ग में 59 मिनट और 44 सेकंड का समय निकाला जबकि महिला वर्ग में दिगफा ने 1 घंटे 7 मिनट 42 सेकंड का समय निकाला।
ये थे आदेश कुमार गुप्त खेल समाचारों के साथ और भारत में बजने वाले हैं 8:00। वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन उससे पहले विश्व समाचार एक बार फिर अमर शर्मा से।
बीबीसी समाचार। कानपुर रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 112 के पार पहुंच गई है। सीरिया के एलेपो शहर से मिल रही खबरों के मुताबिक शहर के सरकारी नियंत्रण वाले पश्चिमी हिस्से में विद्रोहियों की गोलाबारी में एक स्कूल में 7 बच्चों की मौत हो गई है। फ्रांस में आज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनने के लिए हो रहे एक प्राथमिक चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। ये चुनाव मध्य दक्षिण पंथी रुझान वाली विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी करा रही है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में इतना ही। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी मदद कर रहे थे हेमंत कुशवाहा। अगला प्रसारण घटना चक्र ठीक 1.5 घंटे के बाद। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।